गुरवे गौरचंद्राय
राधिकाय
तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। श्री श्री राधा राधिका रमण मंदिर कृष्ण बलराम गौर निताय श्री प्रभुपाद के चरणों में आप प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में रविवार को पधारे हैं, आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण का दसम स्कंद भगवान श्री कृष्ण का मुस्कुराता हुआ मुख मंडल है, उसके दूसरे अध्याय में जहाँ देवता ब्रह्मा शंकर आदि भगवान श्री कृष्ण के माता देवकी के उदर में प्रार्थना करने के लिए आए हैं, ये अध्याय का शीर्ष है। अध्याय का शीर्ष ये है कि देवताओं के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की कंस के कारागृह में देवकी माता के उदर में प्रार्थना। प्रसंग ऐसे चल रहा है कि देवकी के छह पुत्रों को तो कंस ने पटक के मार दिया, इसको षड गर्भ बोलते हैं, और ये छह असल में मरीचि के पुत्र थे जो ब्रह्मा के शराप से अपने पिता के हाथों मारे जाने थे, कंस के ही पुत्र थे और कंस ने इनको मारा। सातवें गर्भ में बलराम जी आए जो भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से देवी ने देवकी के उदर से रोहिणी के उदर में स्थान अंतर कर दिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रकट हुए उसका वर्णन है ये श्लोकों में। आज हम 21वां श्लोक पढ़ेंगे। 18वें श्लोक से ऐसे आना शुरू होता है कि भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकर। भगवान जो विश्वात्मा है, सबसे प्रेम करता है, सबके हृदय में विराजमान है, सबका शुभ चिंतक है, वो भक्तों को विशेष रूप से भय से मुक्त करते हैं। तो यहाँ भक्त है वसुदेव और देवकी जो कंस के कारागृह में भयभीत हैं, उससे मुक्त करने के लिए भगवान ने क्या किया। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकर आविशेष प्रवेश किया मन में अनंक दुबदुबी वसुदेव के अंश भागे न अपने सारे विष्णु अंशों के साथ। उसके बाद वसुदेव चमकने लगा, उससे प्रकाश निकलने लगा, फिर जगत के मंगल करने के लिए वसुदेव के हृदय से मन से भगवान देवकी के हृदय में स्थानांतर हुए। इसको श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जैसे दीक्षा दी, इसको आध्यात्मिक दीक्षा कहते हैं। गुरु अपने हृदय में भगवान को प्रकट करते हैं अपने साधन से, फिर शिष्य के हृदय में स्थानांतर करते हैं। मानो वसुदेव ने देवकी को दीक्षित किया, उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण स्थानांतर हुए। उदाहरण क्या दिया है, जैसे सूर्य अस्त होता है तो चंद्रमा को प्रकाश देता है, तो चंद्रमा जैसे जगता है और जहां प्रकाश चंद्रमा में आता है, ऐसे वसुदेव का प्रकाश देवकी के अंदर आया। उसके बाद कंस कारागर में आया तो देवकी को चमकता हुआ देखा। देवकी की इतनी प्रकाशमान हो रही थी कि कंस आश्चर्यचकित हो गया, अरे पहले तो कभी ऐसे नहीं हुई है। और उसके बाद कंस विचार करने लगा, ये आज का श्लोक है, तो आइए श्लोक को पढ़ते हैं। किम अद्य तस्मिन् करणीयाम् आशु मे यदर्थ तंत्रो न विहन्ति विक्रमम्। स्त्रियाः स्वसोर गुरुमत्यवधोयम् यश्यः श्रियमन्ति अनुकालमायुः। किमद्य तस्मिन् करणीयमासु मे यदर्थ तंत्रो न विहन्ति विक्रमम्। श्रियाः स्वसुर गुरुमत्यावधोयम् यशाश्रियं हन्ति अनुकालमायुः। पाठ कीजिए। किमद्य तस्मिन् करणीयामासु मे यदर्थ तंत्रो न विहन्त विक्रमम्। श्रियास्वसोर गुरुमत्यवधोयम् यशः श्रीहमन्ति अलुकालमायुः। यद्यतस्मिन् करणीयमाधुमे यदार्थ तंत्रो न विहन्ति विक्रमम्। यास्वसोर गुरुमत्यवधोय यशः श्रियमन्ति अनुकालमायु। किमाद्य तस्मिन् करणीयामादुमे यदार्थ तंत्रो न विहन्ति विक्रमम्। हन्ति अनुकालमायो तंत्रो न विहन्ति विक्रमम्।
श्रिया स्वश्रो गुरमत्यवधोयम् यशश्रियमन्त्यनुकालमायुः किमाद्यतस्मिन् करणीयमासु मे यदर्थतन्त्रो न विहन्ति विक्रमम् स्वस्वर्गोर्मत्यवधोय श्रियमन्ति अनुकालम् श्रियास्वसुर्गोर्मत्यवधोयम् श्रियास्वसुर्गर्मत्यवधोयम् श्रियमन्ति अनुकालमाय
किम अद्य किम मतलब क्या करूं अद्य मने अभी वैसे अद्य कहते हैं आज को अद्य कहते हैं आज आज को अभी मैं क्या करूं तस्मिन इसके बारे में देवकी के बारे में क्योंकि ये चमक रही है बड़े प्रकाश आ रहा है करणीय मेरे लिए क्या करने योग्य है क्या करना मुझे चाहिए आसू तत्काल अभी क्या करूं इस वक्त क्या करूं जैसे देखने गया तो बोलता है अभी मैं इस स्थिति में तत्काल क्या करूं तो क्यों ऐसे क्यों इसको विचार आया तो कह दो यद अर्थतंत्रो अर्थतंत्र का प्रभुपाद जी ने अर्थ लिखा है परम पुरुष भगवान जिनका उद्देश्य है असुरों का विनाश करना और भक्तों की रक्षा करना तो अर्थतंत्रों का मतलब है जो सारा सृष्टि का काम संभालता है तो वो जो यद वो जो भगवान जो सभक्तों की रक्षा करता है और शत्रु को मारने वाला है न विहंती विक्रमम वो कभी भी अपने विक्रम कहते हैं बड़ा शक्तिशाली कार्य करना वो कभी छोड़ेगा नहीं उसके कार्यशैली में कभी कमी नहीं आएगी वो शक्तिशाली रहेगा इसका मतलब अभी वो इसके उदर में आ ही गया है तब ये चमक रही है और फिर तो क्या करना चाहिए देवकी को मार दूं तब विचार करता है नहीं स्त्री है और दूसरा स्वसुर है मेरी बहन है और तीसरा गुरमत्या का मतलब गर्भवती है गुरु कहते हैं भारी को वो इस वक्त गर्भवती है तो तीन कारण देते हैं क्योंकि स्त्री है मेरी बहन भी है और गर्भवती है वधो अयम अगर इसका मैं वध कर दूंगा तो यश मेरा खत्म हो जाएगा मेरी कीर्ति श्री ही खत्म हो जाएगी और हंति अनुकालम समय सदा के लिए अनुकालम मतलब आने वाले समय मेरी आयु भी समाप्त हो जाएगी कीर्ति भी समाप्त हो जाएगी यश भी समाप्त हो जाएगा तो ये कंस का विचार है कंस विचार कर रहा है कि देवकी के उदर में वो शक्तिशाली भगवान जो भक्तों की रक्षा करते हैं असुरों का संहार करते हैं वो आ गए हैं इस वक्त मेरे को क्या करना चाहिए तत्काल फिर कहता है इस देवकी को मारना चाहिए नहीं बहन है स्त्री है गर्भवती है तो क्या हो गया मारने से बोला जो ऐसे मारेगा तो उसका यश आयु बल सब समाप्त हो जाएगा तो मेरे को मारना नहीं चाहिए इससे एक सिद्धांत स्थापित होता है जिस भक्त के हृदय में भगवान प्रकट होता है क- कंस जैसा क्रूर व्यक्ति भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसके मन के में भी परिवर्तन आ जाता है। जिसके हृदय में भगवान आ जाते हैं, ऐसे श्रील प्रभुपाद ने, कल आपने अगर श्लोक सुना हुआ तो लिखा था कि कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के अंदर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। जैसे देवकी के उदर में भगवान आए थे, ऐसे इस्कान के अंदर भगवान आ गए। इसलिए इस्कान को कोई समाप्त नहीं कर सकता है, असुरी प्रवृत्ति वाला कोई भी समाप्त नहीं कर सकता है। हाँ, भगवान भक्तों को, वैसे भगवान जिसके हृदय में आ जाए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब श्रील प्रभुपाद का अनुवाद, देवताओं ने प्रार्थना, हाँ कहाँ है, कंस ने सोचा अब मुझे क्या करना चाहिए। अपना लक्ष्य जानने वाले भगवान परित्राण, अपना लक्ष्य जानने वाले भगवान मतलब भगवान जो अपने लक्ष्य को जानते हैं, और वो क्या है, प्रभुपाद जी लिखते हैं चौथे भगवद गीता के अध्याय के नवें श्लोक में कहा है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अपना पराक्रम त्यागने वाले नहीं है। देव की स्त्री है वो मेरी बहन है और गर्भवती है भी है। यदि मैं इसे मार डालूंगा तो मेरे यश ऐश्वर्य तथा आयु निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगी। श्री श्री गौर निताय की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री राधा राधिका रमन की जय। तात्पर्य, वैदिक नियमों के अनुसार किसी स्त्री ब्राह्मण वृद्ध शिशु तथा गाय का कभी भी वध नहीं किया जाना चाहिए। ये पांच चीजें प्रभुपाद जी ने लिखा है पहले स्कंद भागवत में। जिस समाज में बाल की शिक्षा का व्यवस्था नहीं है, स्त्री का सुरक्षा और सम्मान का व्यवस्था नहीं है, वृद्धों का सम्मान मान और अच्छी सुविधा नहीं है, और गाय और ब्राह्मण का सम्मान नहीं है, वो समाज समाप्त हो जाएगा। और यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं जो वैदिक साहित्य को जानते हैं, सभ्यता को जानते हैं, ये पांच अवध्य हैं, इसको नहीं मारना चाहिए, बच्चा स्त्री वृद्ध गाय और ब्राह्मण। ऐसे लगता है कि भगवान का परम शत्रु होते हुए भी कंस वैदिक संस्कृति से अवगत था। असुर भी शास्त्र को जानते थे, भगवान से द्वेष करते थे लेकिन शास्त्र को जानता था, तो कंस भी ऐसा नहीं करना चाहता था। एक और स्थान पे आता है कि गाय और बछड़ा अमृत पी रहे थे असुरों का, तो भगवान श्री कृष्ण गाय बन के और ब्रह्मा जी बछड़ा बन के वहां गए और अमृत पिया, लेकिन असुर ने में गाय को नहीं मारा। ये सातवें स्कंद में जहां भगवान शंकर का नाम त्रिपुरारी होता है, तीन पुलियों वाले शत्रुओं को नाश करना, तो गाय को असुर ने भी नहीं मार रहा था। तो यहां प्रभुपाद जी का कहना है कि कंस असुर था फिर भी वैदिक सभ्यता का सम्मान रख रहा था। इसका मतलब आजकल लोग इससे भी गए गुजरे हैं, बहुत लोगों का पतन हो चुका है, इसका मतलब ये है। अवगत थे और इस तथ्य के प्रति जागरूक जागरूक था कि क्या तथ्य जानता था कंस, ये जानता था कि एक शरीर को छोड़ने के बाद दूसरे शरीर में जाना पड़ता है, और अगर मैं अभी अपराध करूंगा तो बाद में मुझे दंड मिलेगा। इसका मतलब आत्मा के शरीर का परिवर्तन के विषय में कंस को विश्वास था। आजकल तो विज्ञानियों को भी विश्वास नहीं है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा जाती है, ये तो बहुत से लोग जानते भी नहीं है, मानते भी नहीं है, लेकिन कंस भी इस बात को समझता था। देहांतर करता है और मनुष्य इस जीवन के कर्मों के अनुसार अगले जीवन में कष्ट भोगता है। जो अच्छे कर्म करेगा सुख भोगेगा, जो बुरे कर्म करेगा दुख भोगेगा, ये कर्मों का सिद्धांत है। ये आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है और अपने साथ मन बुद्धि और अहंकार को साथ ले जाता है, सूक्ष्म शरीर को, और चित्त अपनी चेतना, तो ये सूक्ष्म शरीर साथ ही रहता है। इसलिए वो देवकी का वध करने से डर रहा था, क्योंकि वो स्त्री थी, फिर उसकी बहन थी और 36 पर वो गर्भवती भी थी। क्षत्रिय वीरतापूर्ण कार्य करके विख्यात होते हैं। प्रभुपद कहते हैं क्षत्रिय को अपना कार्य वीरता से करना चाहिए, इसलिए वो देवकी का वध करने का जघन्य कार्य नहीं करना चाहता था। कंस का शत्रु तो देवकी के गर्भ में के भीतर था, किंतु शत्रु का ऐसी अज्ञान स्थिति में वध करना बहादुरी नहीं है। क्षत्रिय पहले तो ललकारता कि आओ मेरे से लड़ो, और उसके बाद लड़ता है। अगर अस्त्र है शस्त्र है तो उसके साथ लड़ता है, नहीं है तो नहीं लड़ता है। तो अभी देवकी स्त्री है और मेरा शत्रु इसके गर्भ में, और उसको मैं अभी उसको पता भी नहीं है कि मैं क्या उसको मारने वाला हूं, या मैंने उसको ललकारा नहीं है तो उसको कैसे मारूं। तो क्षत्रिय अगर ऐसे जैसे आजकल रात को सोए हुए ऊपर से बम गिराते हैं, ऐसा नहीं मारते थे। ये तरीका क्षत्रियों के युद्ध का नहीं था, ललकारते थे उसके बाद मारने की बात करते थे, और आमने सामने का युद्ध हुआ करता था। तो ये जानता था क्षत्रिय नियमों के अनुसार शत्रु के आमने सामने तथा उचित हथियारों के साथ युद्ध करना चाहिए, और यदि शत्रु मारा जाता तो जीतने वाला विख्यात बनता। कंस ने इन बातों पर बड़े विवेक से तर्क वितर्क किया, और ये पूरी तरह जानते हुए भी कि देवकी के गर्भ में उसका शत्रु प्रकट हो चुका है, वो उसका वध करने से अपने को रोकता रहा। तो इतना ही तात्पर्य है। इससे पता लगता है कि आदमी को संस्कृति और संस्कार होना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका ज्ञान होना चाहिए। कंस जैसे क्रूर व्यक्ति में भी ये ज्ञान था, और उसने देवकी का वध नहीं किया। और हमारे लिए तो ये शिक्षा है कि भगवान को हृदय में धारण कर लेंगे तो फिर हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और संस्था के लिए ये शिक्षा है कि कृष्ण भावना अमृत संघ के उदर में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए हमें निर्भय होकर अपने प्रचार को बढ़ाते रहना चाहिए। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है? मैं थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, स्वस्थ तो। हाँ
प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि कंस के सामने स्थिति पहले भी थी, जब कंस अपनी बहन को विवाह करके घर छोड़ने जा रहा
था, कृष्ण नहीं आया था ना, प्रकट नहीं होता उसके उदर में।
इसका मतलब वो भी उस टाइम भी वो महिला थी, उनकी बहन थी, लेकिन वध करने का कारण
वो सब ठीक है, लेकिन यहाँ शत्रु को मारने की बात है। प्रभुपाद जी कहते शत्रु से युद्ध करने के लिए ललकारने की जरूरत है, शत्रु कृष्ण है देवकी नहीं है। उस वक्त कहा कि अभी इसके पेट आने वाला है इसलिए इसको मार दूंगा, तो वो आएगा ही नहीं। तो वहां जो था वो कृष्ण का प्रकट्य नहीं हुआ था अभी। और दूसरा, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को और भक्ति विनोद जी के तात्पर्य को देखेंगे तो देवकी भक्ति रूपा है और कंस भय है। देवकी भक्ति रूपा है, कंस भय है। कंस के भय से काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये 6 असुर जो हैं ये मर चुके हैं, तब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, तो अब वो भक्ति अवध्य हो गई है। ये उदाहरण दिया है उसका, 6 जो गर्भ हैं, जो 6-12 बच्चे मारे थे ना कंस ने, उसको भक्ति विनोद ठाकुर और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये 6 शत्रु हमारे, ये मन के विकार हैं। ये भक्ति में जब तक नहीं मरते हैं तब तक भगवान हृदय में प्रकट नहीं होते, और जब तो भगवान हृदय में प्रकट नहीं होते हैं तब तक कंस जैसे क्रूर भी शांत नहीं होते। तो भक्ति में भौतिक भय से ये सब अपने अंदर से असुरों का निवारण करना चाहिए। तो देवकी का हृदय शुद्ध हो गया था, और स्थान बनाने के लिए बलराम जी आए थे, जो इन्होंने हृदय में स्थान बनाया, भगवान उसमें प्रकट हुए। और उसके बाद कंस के अंदर के मानसिकता में परिवर्तन हुआ। दूसरा कोई प्रश्न? क्या होता है?
यही सेम इंस्टेंस आप कह बता रहे हैं कि जैसे गर्भ में मान थे तो वो बिना अस्त्र शस्त्र के मारना नहीं चाहिए, तो दीति के गर्भ में जब मरुत आते हैं तो इंद्र जाते हैं उनको मारने गर्भ के अंदर ही।
मरुतों को इंद्र ने मारा वज्र से, इंद्र ये कथा माता दीति इंद्र का शत्रु पैदा करने के लिए प्रार्थना कर रही थी और इंद्र घर में ब्राह्मण बन के बच्चा बन के सेवा कर रहा था और जब उसने गलती की तो इंद्र उधर में जाके उसका वध कर दिया। उसमें कारण क्या है? इंद्र सब कुछ जानता है ऐसा नहीं है, इंद्र जानता नहीं है और वहां मुख्य बात जो है यज्ञ के अंदर मंत्र गलत उच्चारण हुआ, मंत्र यज्ञ के अंदर उच्चारण गलत हुआ कि इंद्र जिसका शत्रु हो वो पैदा हो, तो ये मंत्र के गलत प्रभाव से ऐसे संभव हुआ जो इंद्र जानता था कि मंत्र का गलत प्रभाव है इसलिए। और उसके बाद भी इंद्र ने काटा तो मरे नहीं, और मरे नहीं तो फिर असुर नहीं बने, वो देवता बन गए मरुत। तो वहां वैसे इंद्र भक्त है और इंद्र भगवान की लीला को जानता है तो उस हिसाब से इंद्र ने जो कुछ किया उसका कोई निंदा नहीं कर रहा है। उसने अपनी गलती माना, माँ के हाथ जोड़ के कहा कि मैं इंद्र हूँ, मैं आपके यहाँ छुप के बैठा हुआ था और आपके पुत्रों का वध करना चाहता, मरे नहीं है। और ये सुन के आश्चर्यचकित तो परीक्षित महाराज भी हो गए कि वज्र से कैसे नहीं मरे। तो सुखदेव महाराज कहते आप ब्रह्मास्त्र से कैसे नहीं मरे, अगर आपको जिसने रक्षा की उसने उसकी भी रक्षा की, वो भी तो भक्ति के साधन से जन्म ले रहा था। तो वहां जो उद्देश्य था कि भक्ति से प्रकट होने वाले बच्चे का वज्र से भी वध नहीं हो सकता, इंद्र भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और यहां है कि भगवान का कोई क्रूर भी कुछ नहीं कर सकता। थोड़ा सा सिद्धांत इतना ही है, भक्त और भगवान दोनों जहां होंगे वहां अवध्य हो जाते हैं, चाहे इंद्र शत्रु हो या कंस जैसा क्रूर शत्रु तो भी कुछ नहीं कर सकता। हरे कृष्णा। हाँ जी
हरे कृष्णा। तो जी जैसे इसमें शास्त्रों से उदाहरण दे रहे हैं कि कंस को शास्त्रों का ज्ञान था और वो उसका पालन भी कर रहा है कि स्त्री है प्रेग्नेंट है।
कंस का ज्ञान आप पढ़ेंगे बस थोड़े दिनों में आएगा। कंस तो ऐसा अच्छा प्रवचन करेगा, लेकिन इसको कहते हैं असुरों का वेदांत। हिरण्यकश्यप भी प्रवचन करता है और वेदांत का प्रवचन करता है, कहता है मार कौन नहीं मरता है, जो जन्म लेता है वो मरता है, ऐसा सब कहता है, लेकिन अपने को अमर बनाना चाहता है। सबको कहता है मरते हैं, मैं नहीं मरूंगा। तो ये सब जानते हैं शास्त्र, लेकिन अपने काम के आने के लिए। तो असुर भी शास्त्र जानते हैं, असुर वेदांत भी ये जानते हैं, लेकिन वो भक्तों वाले तरीके से नहीं जानते हैं, इतना अंतर होता।
तो इसमें ना मेरा प्रश्न ये था इसमें कि जैसे हम प्रहलाद महाराज का प्रसंग आता है तो देवता तो ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं असुरों से और वो अप्लाई भी करते हैं अपने पर्सनल लाइफ में, तो जब वो कयादु प्रेग्नेंट होते हैं तो उस समय पर वो उनको मारने का प्रयास करते हैं।
देवता मारने के लिए ले जा रहा था, बोला इसको नहीं मारूंगा, इसका बच्चा होगा उसको मारूंगा, ऐसे इंद्र कह रहा था। और तब नारद ने कहा कि तुम कैसे इसको मार सकते हो, नहीं मरेगा ये तुमसे मरने वाला नहीं है, तुम इसको छोड़ दो। और उसने अपने गुरु की देव गुरु की आज्ञा को मान लिया, और ये भी वचन को सत्य करना था भगवान को कि नारद ने कहा है नहीं मरेगा तो नहीं मरेगा। वहां कितने वचन सत्य हुए हैं, ब्रह्मा का वचन सत्य किया कि कोई जानवर नहीं मारा, इंसान ने नहीं मारा। प्रहलाद का वचन सत्य किया कि जहां से निकलता था वहां निकला, कुमारों का वचन सत्य किया, नारद का वचन सत्य किया, हिरण्यकश्यप का वचन भी सत्य किया। हिरण्यकश्यप ने कहा ये मेरे से मरने वाला नहीं है, उसका वचन भी सत्य किया। ये पांच वचन सत्य हुए हैं, ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में लिखते हैं, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम। तो पहला ब्रह्मा जी, उसने कहा था कोई नहीं मारेगा मेरा प्राण मेरे सृष्टि से। दूसरा नारद जी के ये मरने वाला नहीं। तीसरा प्रहलाद के खंभे में है कि नहीं है। चौथा कुमार, चार कुमार उन्होंने असल में ऐसे भी मानते कुमार ही प्रहलाद के रूप में आए कि हम थोड़ी सहायता करेंगे ताकि ये बिचारों का उद्धार हो जाए। तो कुमारों को, चार कुमारों का वचन भी था कि इनको असुर बनेंगे, तो भगवान ने कहा मैं आऊंगा। तो ये सब बातें हैं। और पांचवा हिरण्यकश्यप स्वयं ने कहा था अगले श्लोकों में ये मरेगा नहीं मुझसे। भगवान ने कहा बराबर नहीं मरेगा, तुम कुछ भी करो नहीं मरेगा। तो वहां विश्वनाथ चक्रवर्ती ने पांच सच्चे विधातों को लिखा। हाँ, एक पीछे देवी कह रही है, बोलो बेटी। माइक्रोफोन बोलता नहीं है लेकिन ले लो।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अभी प्रभु जी ने प्रश्न पूछा था कि हिरण्यकश्यप के बारे में, और आपने बताया कि वो प्रवचन भी बहुत अच्छा दे सकता था, लेकिन जब अपने आप को डिफेंड करने की बारी आई, जब अपने ऊपर आई, तो उन्होंने अपने आप को डिफेंड करने के लिए मतलब कुछ भी हद तक वो कर गुजरते हैं। तो ऐसे मतलब मैंने शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब डिवोटीज हम लोग माला भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं और ज्ञान भी होता है, शास्त्रों का पता भी होता है, लेकिन जब हमारे ऊपर अपने जीवन के ऊपर कुछ इस तरह का आ जाता है मान लो परिस्थिति, तो हम लोग अपने आप को डिफेंड करने के लिए सामने चाहे डिवोटी ही क्यों ना हो उनके ऊपर भी हम इल्जाम भी लगा देते हैं, और अपने आप को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं?
इसको कहते हैं शास्त्र को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना, शास्त्र को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना। और तो इसलिए ये भक्ति के विरोधी है, अन्य अभिलाषा हो जाएगी, ये भक्ति नहीं है, अनुकूल नहीं है भक्ति के, ये भक्ति के विरुद्ध है। इसलिए कंस भक्त नहीं है, जबकि कृष्ण का या नारद जी कहते हैं जितना कंस भक्ति कर रहा था, भगवान को याद कर रहा था, इतना भक्त भी नहीं करते, लेकिन फिर भी भक्त नहीं है। स्मृति उसकी भगवान की ज्यादा है लेकिन भक्ति नहीं है, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। अन्य अभिलाषिता, अभिलाषा नहीं है, अभिलाषिता है। अभिलाषिता का मतलब बार बार वही कुछ अपने लाभ के लिए धर्म को भक्ति को यूज करना, और अभिलाषा का मतलब अचानक कभी कोई संकट आ जाए। जैसे उदाहरण एक देते हैं, एक भक्त विदेशी था, वृंदावन में आया, कुछ फीस्ट खाया, लोही बाजार में सामान लेने गया, पेट में गड़बड़ हुई, कहता है भगवान घर तक पहुंचूं तब तक रक्षा करना। तो ये अभिलाषा है, इसमें कोई भगवान से कुछ नहीं मांग रहा है, लेकिन ऐसी अभिलाषा भक्ति के विरुद्ध नहीं है जिसमें आप कुछ मांग नहीं रहे हो लेकिन उसका धर्म के लिए दुरुपयोग करोगे तो अभिलाषा, अभिलाषिता हो जाएगी। अभिलाषिता का मतलब सकाम भाव से बार बार धर्म को अपने लिए उपयोग में लाना, तो वो भक्ति के विरुद्ध है। अभिलाषा ऐसे अचानक कहीं कोई दुर्घटना के स्थान पे भय लगे, हरे कृष्णा कहे, भगवान रक्षा करो, तो वो भक्ति के विरुद्ध नहीं है। जैसे द्रौपदी ने किया, भाई द्रौपदी ने भी भगवान को पुकारा लेकिन भक्ति के विरुद्ध नहीं है। द्रौपदी भक्ति रहित नहीं मानी जाती है, इच्छा तो उसने भी की थी। तो अभिलाषा और अभिलाषा, तो ये अभिलाषिता हो गई कि हम अपने धर्म, अपने स्वार्थ के लिए धर्म का उपयोग करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, सत्य के ऊपर टिकना चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम धर्म कर्म गर्म ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो उत्तम भक्ति नहीं है फिर, ये सामान्य भक्ति हो जाएगी, उत्तम भक्ति में ऐसे नहीं किया जाता। हाँ भाई,
आप फीमेल फ्यूटोसाइड हम देखते हैं आजकल, तो जो बच्चा आ रहा होता है उसका क्या दुश्मनी होता है दूसरे के साथ कि उसको मार दिया जाता है?
ये जघन्य अपराध है, भ्रूण हत्या जघन्य अपराध है। दो ही बड़े अपराध पूरे विश्व में हो रहे हैं, एक गाय का हत्या और एक भ्रूण हत्या। इसलिए दुनिया में कभी शांति हो नहीं सकती, कुछ भी करो कभी कभी शांति नहीं हो सकती। ये दो सबसे बड़े घिनौने पाप धरती के ऊपर हो रहे हैं, एक रक्त गाय का धरती पे गिर रहा है और दूसरा भ्रूण हत्या हो रही है, बच्चे को जन्म से पहले मारा जा रहा है। ये दो हत्याएं बड़े से बड़ा पाप है, इसलिए दुनिया अशांत है, अशांत रहेगी, कोई शांत नहीं कर सकता। इन दोनों पापों से बचना चाहिए।
मेरा प्रश्न है कि यहाँ पर लिखा ही है, जैसे शुरुआत हुई है कि कंस ने सोचा, तो कंस मतलब असुर, असुर का मतलब है कि द्वेष, द्वेषी, इसके मन के अंदर ही छह विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, और एक क्रोधी व्यक्ति किस प्रकार उसके ऊपर भगवान की कृपा हो रही है कि वो सोच रहा है, अन्यथा क्या है कि एक असुरी प्रवृत्ति ही है उसकी कि मार देना काट देना, वो सोचा कैसे उस व्यक्ति ने, जो हम श्लोक ही देख रहे हैं कि उसने सोचा वो आया तो वध करने के लिए, वो देखते ही मार देना चाहता है, क्यों परिवर्तन आ रहा है?
असल में परमात्मा उसके हृदय में भी रहता है, कंस के भी, वही परमात्मा देवकी के हृदय में भी है। कंस के हृदय में कहा कि अब तुम इस तरीके से करो क्योंकि तुम्हारे को अभी मेरे को नहीं मारना है, अभी तुम मारने का प्रयास करोगे तो अभी मारूंगा तो पूरी भागवती नहीं दिखी जाएगी। इसलिए कहते हैं कि बलराम जी को भगवान ने स्थानांतर क्यों किया, बोला बलराम जी जन्म लेते और कंस आके कुछ ऐसी वैसी करता तो उसी वक्त हल उठा के मार देते, तो कृष्ण अवतार से पहले ही कंस मरवद हो जाता। इसलिए भगवान ने कहा कि नहीं, बलराम जी को वहां भेज दो, ये रुकने वाला नहीं है, मैं इसका मन बदल दूंगा और बहुत सारी लीला करूंगा ब्रज में, उसके बाद इस असुर को मारना मेरा काम नहीं है, वो तो विष्णु का काम है, वो अपने आप मारेगा। विष्णु का भी क्या काम है, वो तो असुर तो अपने पाप से मरता है, कोई उसको मारता नहीं है। तो असल में इसका ऐसे माना जाए तो भगवान उसके हृदय में परमात्मा थे, उन्होंने उसको प्रेरणा दी कि इस वक्त तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान की लीला पूरी नहीं होगी। वैसे भगवान सारे लीला के डायरेक्ट, भगवान ही लीला रचते हैं, फिर स्वयं भगवान उसमें लीला का भाग लेते हैं, फिर भगवान को ही पता नहीं होता है मुझे क्या करना है, क्योंकि वो डायरेक्टर जैसे कराता है वैसे करेगा योग माया, लेकिन ओरिजिनल स्क्रिप्ट राइटिंग वाला भगवान है, लिखने वाला भगवान है लीला, लेकिन जब स्वयं लीला करते हैं तो जैसे योग माया कराती है वैसे करते हैं। तो ये सब योग माया का काम है असल में, जिसने लीला करनी थी इसलिए कंस के द्वारा ऐसा विचार प्रकट कराया, कंस के द्वारा ऐसा विचार प्रकट करना ये भगवान की लीला शक्ति, परमात्मा ने ही किया। लेकिन उससे प्रभुपाद ने कंस असुरों में भी कुछ सदाचार है इस बात को कहना चाहा, इससे समझना चाहिए कि संसार में लोगों को जरा समझदार होना चाहिए, असुरी प्रवृत्ति वाले भी बुरा काम नहीं करते हैं, इतने आजकल सभ्य लोग कर रहे हैं। हाँ जी,
हरे कृष्ण प्रभु जी।
जी
हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कौरवों की सेना में भीष्म पितामह जी थे जो अर्जुन के अगेंस्ट थे, विरुद्ध थे।
अर्जुन के विरुद्ध ही नहीं थे, भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से कौरवों के प्रधान सेनापति बने, क्योंकि नहीं तो कौरव युद्ध ही नहीं करते। इसलिए प्रभुपाद जी ने लिखा है कि कभी कभी भगवान के विरुद्ध में कार्य करे के भी भगवान को प्रसन्न करके भक्ति की जा सकती, और उसका उदाहरण भीष्म पितामह है, भागवत पुरुष है, नहीं तो अंत समय भगवान उसको दर्शन देने क्यों जाते हैं मरते समय। भीष्म पितामह पांडवों का शत्रु नहीं था, भीष्म पितामह श्री कृष्ण की इच्छा से कौरवों के पक्ष में युद्ध किया।
लेकिन वो अगर धर्मात्मा थे तो उनका इतना कष्ट क्यों झेला उन्होंने?
कोई कष्ट नहीं है उनके शरीर में, कोई कष्ट नहीं है, भगवान ने दृष्टि डाली उसका सारा कष्ट ही दूर हो गया। वैसे भागवत में तो नहीं हमने पढ़ा है, लेकिन ऐसे संत समाज में ये प्रचलित बात है कि द्रौपदी ने एक दिन पूछा कि मैंने जब आपसे प्रश्न पूछा था तब आप चुप क्यों रहे। बोला उस वक्त मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था। जिसका अन्न खाता है तो आदमी का मन उतना सीधा नहीं सोचता है। अब अर्जुन के बाणों से ये मेरा खून सब जो अर्जुन के जो दुर्योधन के अन्न से बना था वो बह गया। अब मेरी बुद्धि निर्णय में है, अब मैं समझ रहा हूं। और उस वक्त जो प्रार्थना की है, ऐसा संत भाषा में ऐसी बात चलती है, लेकिन मैं इसको संभवतः महाभारत में हो, लेकिन भागवत में ऐसा प्रसंग नहीं है। लेकिन ऐसे ये ठीक भी लगता है उसका कहना, क्योंकि स्वयं कहते हैं कि हम दुर्योधन, क्योंकि मैंने असल में भीष्म पिता मैंने वचन किया था अपने पिता से, जब तक हस्तिनापुर का सिंहासन सुरक्षित हाथों में नहीं होगा तब तक मैं इसकी रक्षा करूंगा, तो अपने वचन से बंधा हुआ था। इसलिए भगवान उसको सामने स्वप्न में क्या उसके ध्यान में आके कहा, तुमने ऐसा वचन क्यों किया, तुमने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन क्यों किया, तुमने देश को दो विभाजन क्यों किया, आपने ये सब का विदुर की तरह छोड़ के क्यों नहीं पहले चले गए। अब तुम्हारे लिए एक ही रास्ता बचता है कि तुम उनसी की तरफ से लड़ो, तभी मेरे अवतार का उद्देश्य पूरा होगा। एक पुस्तक लिखा है रामानुज संप्रदाय के महात्मा ने, दोज 18 डेज ऑफ वार, तो 18 दिन के महाभारत के ऊपर दो वॉल्यूम में पुस्तक है अंग्रेजी में, जिसमें पहले भीष्म पिता और भगवान के बीच में वार्तालाप है। तो उसमें भीष्म पितामह को भगवान ने कहा कि आपने ऐसे क्यों किया, आपको नहीं करना चाहिए था, अब एक ही रास्ता बचा है, मेरी भक्ति करनी है, मेरे भक्त हो, अभी तुम कौरवों के प्रथम सेनापति ही बनो। ऐसे सब एक एक योद्धा में क्या गलती थी, क्यों मारा गया, उसके लिए उसने महाभारत से लिखा है। बड़ा अच्छा पुस्तक पढ़ने जैसे। उसमें फोटो के ऊपर गरुड़ को बिठाया है कि ये ना दिखता है कि अर्जुन का रथ है, लेकिन युद्ध तो कृष्ण ही कर रहा है। चलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।